ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। हर बार हम आपको ये बताते आए हैं कि जो ज्ञान, जो भी बातें पिछले एक सवा साल से जो हम आपके साथ जुड़े हैं, जो बातें करते रहते हैं इस प्रोग्राम में, वो पूरा ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया गया है और मुरली के माध्यम से वो ज्ञान हर रोज हम आत्माओं तक पहुंचता है। चाहे वो हमारा अपना परिचय हो, चाहे परमात्मा का परिचय, चाहे सृष्टि चक्र का परिचय, और उसके अलावा उस ज्ञान को अपने जीवन में हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जीवन की वो सिचुएशंस जो अभी तक बहुत मुश्किल लग रही थी, कुछ बिलीफ सिस्टम्स को लेकर हम चलते जा रहे थे, उनको किस तरह से परिवर्तित करना है, ये पूरा ज्ञान लगातार हमें मिलता है बाबा की मुरली द्वारा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज फिर हम मुरली की तरफ बढ़ते हैं, वो मुरली जो परमात्मा स्वयं हम बच्चों को, हम आत्माओं को देते हैं। और इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शीलू बहन, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
शीलू बहन, आज मुरली की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी प्यार भरी मुरली जो बाबा की होती है, जो हर बार ये एहसास देती है कि हमारा जो लौकिक संसार है उसके साथ साथ अलौकिक संसार का एहसास भी हम इसी वातावरण में रहते हुए ले सकते हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की मुरली की तरफ बढ़ते हैं।
तो आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन अपने घर चले जाएंगे। तो सुख धाम और शांति धाम,
जो अभी तक हम ये कहते थे कि हमें जाना है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, और स्वर्ग की बात करते थे या बियॉन्ड दिस वर्ल्ड की बात करते थे, तो
इसलिए उसके लिए याद करते करते पावन बन अपने घर जाना, ये तरीका बाबा बताते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाप की पुचकार प्यार किन बच्चों को मिलती है। जैसे पिता माता पुचकार ऐसे, तो बाबा भी हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किन बच्चों को प्यार करते हैं?
एक्चुअली अगर हम अपने भी परिवार में देखें, अपनी जिंदगी में भी, तो कुछ बच्चे बहुत लाडले होते हैं जिनको हम सच में बहुत प्यार दे रहे होते हैं। जी,
तो इसका उत्तर है कि जो बच्चे आज्ञाकारी और बहुत मीठे हैं, क्योंकि आज्ञाकारी होंगे तो पिता माता पिता का प्यार मिलेगा, और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्रेम रहे, कभी भी भूले न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार हो, तब बाप का प्यार मिले।
आपस के जो रिश्ते हैं उनको भी हम किस तरह से देखें,
ये पहले गीत बजता है। तो आज का गीत है, बहुत सुंदर गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। परमात्मा ने हमें सहारा दिया है तो आत्मा दिल से उसका शुक्रिया करती है। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, बच्चे समझते हैं आवागमन में हम कितने भटके हैं, इस संसार के चक्र में आकर हम बहुत भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे दूसरा लेते थे खुशी से। अपने आप आत्मा को सत्यों की दुनिया में जब पता चलता है कि अभी ये मेरा शरीर पुराना हुआ है, तो स्व इच्छा से आत्मा शरीर छोड़ते, जैसे वस्त्र उतारते, और साक्षात्कार होता है कि नया चोला अभी मिलने वाला है, और सहज ही उस चोले से निकल दूसरे चोले में पहुंच जाते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए मृत्यु का कोई डर नहीं है वहां सत्य में। इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं, ऐसे नहीं कि देह नहीं छोड़ते लेकिन स्व इच्छा से देह छोड़ते, वो भी दीर्घायु 150 साल की, उसके बाद आत्मा स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है।
तो वो जैसा आपने कहा कि मृत्यु का भय ही नहीं रहता,
बिल्कुल
स्वयं जो है खुद को लगने लगता है, जो कहा भी जाता था कि पहले ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती।
जी जी जी, मृत्यु भी अपने हाथ में है। तो बाबा कहते हैं, सुख धाम में अपने आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। तो बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। अभी भी समझो, खुशी से आत्मा शरीर छोड़े, दुखी होके न छोड़े, तंग होके न छोड़े, डर से न छोड़े, खुशी से। बस चोला बदल रहे हैं, अब ये पुराना हो गया चोला। बच्चे समझते हैं, हम आत्मा परम धाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। तो बच्चों को समझाया गया है कि सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, ये समझने की बातें, कैसे परमात्मा की याद से आत्मा को खुशी होती है। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर सुख धाम में आते हैं। तो बाप तुमको सहारा देते हैं कि बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। आत्मा याद कर रही है उस धाम को, तो अब बाबा कहते हैं वो धाम आया कि आया, अर्थात तुम वहां पहुंचे कि पहुंचे। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पाठ बजाना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए, सब डर खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा डर मृत्यु का, वो ही नहीं रहता तो बाकी किस बात का डर। तुम सभी जन्मों को जान गए हो और ये भी जानते हो कि यह अंतिम जन्म है। इस चक्र में इस समय हमारा अंतिम जन्म है। अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित हो गई है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, परम धाम से नीचे तो आ गए परंतु अब अपने आप वापस नहीं जा सकते। जब तक परमात्मा गाइड ना आए और वो वापस ना ले जाए,
पूरा कालचक्र को खत्म करते ही करने के बाद।
बाबा मिसाल देते हैं, जैसे लखनऊ में एक बारादरी है, भूल भुलैया का एक मकान है, बिल्डिंग है, उसमें अंदर तो चले जाते हैं लेकिन इतनी सीढ़ियां हैं, अंदर ही अंदर है, मनुष्य अपने आप बाहर ही नहीं निकल सकता। वो सोचेगा इस रास्ते से बाहर निकलेंगे, फिर वहां दीवार आ जाती है, फिर सोचते उस तरफ जाएंगे तो निकलेंगे, तो दीवार आ जाती है, आखिर निकल ही नहीं सकते जब तक गाइड ना आए। वो गाइड को पता है कि कैसे बाहर निकलना होता है। तो परमात्मा कहते आवागमन के चक्कर में तो आ गए, चक्र में तो आए, पर इनसे बाहर कैसे जाना है ये पता नहीं। इसलिए परमात्मा को ही आकर के वापस घर जाने का रास्ता बताना पड़ता है। तो परमात्मा को कहते हैं ये गाइड, उसके पहले लिबरेटर, तो लिबरेटर भी बनते हैं फिर गाइड भी बनते हैं।
क्योंकि लिबरेटर इन द सेंस कि वो जो पूरा जिस जकड़न में हम बंधे हैं, जिन बंधनों में हम बंधे हैं,
उनसे लिबरेट करके घर ले जाते हैं। या बाबा कहते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तो पंख एक पंछी के टूट जाए तो उड़ेगा कैसे, तो बाबा पंख देते हैं, ज्ञान और योग के पंख, इनसे आत्मा फिर से उड़ जाती है। बाबा ने अपना परिचय दिया है और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं कि कैसे आत्मा ही सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े तब फिर सतो प्रधान बन सके। आ तो गई तो सतो प्रधान से तमो प्रधान तक का चक्र लगाया, भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए परमात्मा को याद करना पड़े, आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। तो बाबा ने समझाया है कि बस मुझ एक को याद करो, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम बच्चे बाबा को याद करते होंगे तो तुम औरों को भी कह सकोगे कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। अगर हम ही नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं कह सकेंगे। हम लोग पहले एक ना कुछ लिख लेते थे, दीवारों पर, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, तो जैसे पढ़ते तो अचानक ध्यान आ जाता था कि मुझे शिव बाबा को याद करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बाबा बताते हैं, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है, ज्ञान का मनन चिंतन करना, इसको कहेंगे विचार सागर मंथन करना। सुबह को विचार सागर मंथन करना अच्छा होता है, सवेरे का समय बहुत अच्छा है विचार सागर मंथन करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठे एकदम फ्रेश है, बाबा को याद किया, फिर ज्ञान का मनन चिंतन करें, क्योंकि बुद्धि रिफ्रेश होती है। अब गीत है, राम सिमर प्रभात मोरे मन,
राम का स्मरण।
हाँ, आत्मा अपने मन को कहती है, हे मन तुम परमात्मा का स्मरण प्रभात में करो। तो भक्ति मार्ग में ये गायन है, परंतु सिर्फ गाते थे, अभी बाप का डायरेक्शन मिला है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए थे, तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था संगम पर, मैंने ही कहा था ये सारी दुनिया अब कब्रिस्तान होती है, जो खत्म होने वाली चीज है तुम उनको याद क्यों करते हो। मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। देखो पतित दुनिया में कितने करोड़ों मनुष्य हैं और पावन दुनिया में कितने होंगे,
9 लाख,
कितने थोड़े होंगे। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं, तो महाकाल आएगा तो क्या करेगा। शिव को महाकाल कहते हैं, तो महाकाल को बुलाना माना सबको काल से मुक्त करना, घर ले जाना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर हमें भक्ति का फल दो, तो भक्ति का फल क्या है, ज्ञान, और ज्ञान से होती है गति और सदगति, घर जाते हैं जो मुक्ति में जाते फिर सतयुग में आते हैं, जिसको जीवन मुक्ति या सदगति कहते हैं। तो बाप ने समझाया है कि अब पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। कई कहते ना कि जब दुख शुरू हुआ तब क्यों नहीं भगवान आया, अब बाबा कहते मैं तो उस समय आ ही नहीं सकता हूँ, अब दुख शुरू ही हुआ तो दुख को तो बढ़ना है ना, अगर मैं उसी समय आ जाऊं तो दुख तो फिर बढ़ना है, तो क्या परमात्मा दुख स्थापन करता है। कई कहते हैं परमात्मा द्वापर के अंत में आया, हम कहते हैं द्वापर के अंत में नहीं आया,
क्योंकि द्वापर के अंत में फिर सतयुग आ जाना चाहिए।
हाँ, पर कलयुग को तो आना ही है, तो द्वापर के अंत में आकर के क्या करेगा। जैसे सूर्योदय है तो वो तो घोर अंधेरी रात हो तब सूर्योदय हो ना, अभी सांझ ही हुई है फिर सूर्योदय कैसे होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ अंत में। अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है, तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। बाबा उसको कहते विचार सागर मंथन, जैसे वो सागर मंथन दिखाते हैं ना, तो ये विचारों का सागर मंथन है। कई बार वो कहानी में बतलाते सागर मंथन किया तो कई चीजें निकली, बहुत चीजें निकली, तो अच्छी बातें भी निकली पर विष भी निकला। तो जब श्रेष्ठ विचारों का मंथन करते हैं तो अशुद्ध विचार भी आ जाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मन तो पुराने विचार लाएगा, पर जब ज्ञान के विचार मन में लाते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अशुद्ध खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है, तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है, तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो, बाप की महिमा करो, अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करो, बाबा आपकी तो कमाल है, आपने हमको क्या से क्या बना दिया, ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है, वो कभी भी अपनी देह नहीं लेते।
यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है बात, क्योंकि बाबा स्वयं ये कह रहे हैं। ये जो बात हम हर बार अभी तक कहते आए हैं कि जितनी भी हमने बातें की है शिलू बहन इस पूरे प्रोग्राम में, वो बाबा द्वारा दिया गया ही ज्ञान है। तो आज वही बिल्कुल हमारे हाथ में कागज है, तो ये बिल्कुल बाबा द्वारा कही गई बात है और बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में आ रही है आज कि परमात्मा कभी देह नहीं लेते हैं,
अपनी देह नहीं है उनको। जैसे हम आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती है फिर माँ के गर्भ से जन्म लेती है, परमात्मा ऐसे नहीं लेते। बाबा खुद बताते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये ब्रह्मा अपने जन्मों को नहीं जानता है, तुम भी नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानता था, अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो अब बाबा ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप घट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। शिव बाबा की याद को बाबा कहते यात्रा है।
तो ये जो अभी तक जो हमने कार्मिक अकाउंट्स की बात हम जो करते आए हैं, तो अभी तक हमने नेगेटिव में किया था, क्योंकि जैसे ही हम द्वापर में आए बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए, हम वो एक वो कर्मों का एक हिसाब इकट्ठा एक गठरी लेके बैठे रहे। तो यहाँ वक्त आया है कि बाबा को याद करते करते हम उस गठरी को प्लस में लेके जाते
हैं। हाँ, और ये याद की यात्रा है, जिस यात्रा पर जैसे यात्री जाता है ना, उसके सामने लक्ष्य होता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो इसलिए इस याद की यात्रा में हमें लक्ष्य मिलता है कि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाना है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हरेक आत्मा अपनी भृकुटि के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं कि भृकुटि के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे नहीं कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव इस भृकुटि में चमकता है, आत्मा चमकती है। क्योंकि हर एक के शरीर में आत्मा है, परमात्मा नहीं।
तो यहाँ बाबा ने क्लियर कर दिया कि वो सर्वव्यापी नहीं है, हर एक में परमात्मा को जो हम बात कहते हैं, तो उन्होंने कह दिया ये कि नहीं ये आत्मा है जो चमकती है।
बिल्कुल, आत्मा भाई भाई है। इसलिए देखो भारत में क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो किस हिसाब से भाई भाई हैं? आत्मा के नाते से भाई भाई है। पॉलिटिकली के हिसाब से कहेंगे भाई सब धर्मों को समान मान्यता है, धर्मनिरपेक्ष है यहाँ, लेकिन स्पिरिचुअली अगर इसका मीनिंग ले तो यही कहेंगे सब आत्माएं हैं, इसीलिए का भाई भाई है। परंतु भाई भाई का अर्थ समझते नहीं। तो भाई भाई होने के नाते तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तो भगवान अपने बच्चों को कहते हैं कि हे बच्चे, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब उसी को याद करते हैं। तो हे बच्चे आपस में प्यार रखो। क्यों? क्योंकि तुम भाई भाई हैं। फिर यदि कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो फौरन परमात्मा से माफी भी मांगो। ये भी बाबा कहते हैं माफी जरूर मांगो। जैसे कोई भूल करता है तो कहता है ना आई एम सॉरी, तो बाबा को सॉरी भी कहो, क्योंकि बाबा के फरमान का उल्लंघन हुआ। अच्छा उल्लंघन हुआ भी और फिर सॉरी कहा तो बाबा माफ भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं माफ। फरमान का पालन भी करना है, अगर भूल हुई तो सॉरी कहकर फिर अपने आप को बदल दो।
लेकिन बार बार जो हम मिस्टेक्स करते हैं शिलुबेन, यहाँ बहुत क्लियर करना जरूरी है। एक बार पहले भी मुरली में हमने जो बात की है कि एक बार मिस्टेक हम कर जाते हैं, क्योंकि संस्कारों वश हम हैं या एक प्रोसेस में होते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसे निकल पाने के लिए में इतना पॉसिबल नहीं है। तो जब गलती हो जाए तो गिल्ट में जाने की बजाय कि अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार ये भी कहते हैं हमारे साथ जो बहुत से दर्शक है कि मुझसे योग लगता ही नहीं है, मुझसे वो गुस्सा आ ही जाता है, मैं कुछ भी करता रहूं नहीं तो मैं छोड़ ही देता हूं, मुझसे नहीं होगा। तो वो छोड़ना नहीं है, और वी कैन एक्चुअली अपोलोजाइज और उसके बाद हम कोशिश ये करें कि दोबारा उसको रिपीट ना करें।
फिर वो जैसे आपको बताए कि चलो बाबा से माफी मांगी, पर फिर प्रतिज्ञा भी करो कि ये भूल मैं फिर से नहीं करूंगा, ये भी बहुत जरूरी है। और जब प्रतिज्ञा की संकल्प किया तो शक्ति आएगी बाबा की, फिर दोबारा नहीं करेंगे। क्या होता है, हम माफी मांग लेते हैं, जैसे कोई कन्फेस कर ले, हाँ मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ करो, परंतु फिर साथ में प्रतिज्ञा नहीं करते कि दोबारा नहीं करूंगा, बस इतना ही कह देते ये भूल हो गई। कई तो यहाँ तक कहते हैं मैं तो भूलों का सागर हूँ,
मैं क्या करूँ, मुझसे गलती होती, मेरे तो बस में ही नहीं है, मेरे हाथ में ही नहीं है।
कई यहाँ तक इंग्लिश में इसे कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो भगवान मैं तो भूले करता रहूंगा, आप क्षमा करते रहो। अब ये तो ठीक नहीं है ना, चलो भूल हो गई माफी मांग लो, परंतु ये तो नहीं कि भूले करते रहो, हाँ वो भूल जो हुई उसे सीख लो, और सीख करके समझो कि चलो इससे मेरा अनुभव बढ़ा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि ए बैड एक्सपीरियंस इज बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग जजमेंट, बट द रॉन्ग जजमेंट शुड लीड यू टू अ गुड एक्सपीरियंस, यू नो इट शुड लीड यू टू अ गुड जजमेंट, एंड दैट गुड जजमेंट देन विल लीड यू टू अ गुड एक्सपीरियंस। सो मे बी रॉन्ग जजमेंट हैज लेड टू अ बैड एक्सपीरियंस,
बट देन द सेम बैड जजमेंट कैन एक्चुअली लीड यू टू अ गुड जजमेंट।
नो, बैड जजमेंट will make me understand,
क्योंकि वो experience wrong, yes.
मिला ना, तो फिर हम वो wrong judgment नहीं लेंगे, फिर हम सही judgment लेंगे ताकि
हमारा अनुभव हो वो अच्छा हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं failures are pillars of success, a failure is not a defeat,
but failure को भी acceptance अगर हम कर लेते हैं that I am a failure, that is a defeat।
या एक्सेप्ट नहीं करो ना तो फेलियर तो दिए पड़ाव है ना, दिया स्टेप्स, स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ये बहुत जरूरी है,
चैलेंजेस हो जाते हैं,
बिल्कुल उनको चैलेंज समझे।
एक हम अभी जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जिंदगी एक रेस है, हम कहते हैं बट वी शुड ऑलवेज सी इट एज अ हर्डल रेस, दी हर्डल्स आर पार्ट ऑफ द रेस। हम क्या करते हैं कि चैलेंज आया या हर्डल आया हम डर के बैठ जाते हैं, सो अगर हम प्रिपेयर हैं कि वो हर्डल रेस होगी ही तो उसमें अडेप्टेबिलिटी हमारी कितनी होती है,
बिल्कुल
उस तरह से फिर हम उसको पार कर जाते हैं।
अगर हम प्रॉब्लम्स के रूप में देखते हैं तो फिर सोचेंगे ये नहीं कर सकती हूँ, पर चैलेंज के रूप में देखें तो क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए सोच में ही अंतर हो जाता
है, वन थॉट अवे चीजें होती है।
तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को फरमान है कि बच्चे बहुत मीठा होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देखो बाबा कभी किसी को दुख देते हैं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, तो हम उनके बच्चे हैं तो हम कैसे किसको दुख दे सकते हैं।
यहाँ बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है शीरू बहन की, हर बार हम ये कहते हैं जब भी हमारे साथ कुछ हो रहा होता है कि परमात्मा ये चाहते हैं, परमात्मा तुम क्या चाहते हो, परमात्मा आप मेरा दुख क्यों नहीं ले लेते, परमात्मा इतना दुख क्यों दे रहे हो, कितनी बार हम शिकायतें कहते हैं, व्हाई यू पनिशिंग मी गॉड। So again,
ये भी अज्ञान ही है, वो तो दुख हरता सुख करता है, वो दुख नहीं देता। बाबा है ही दुख हरता सुख करता, बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से किसको समझाएंगे तो विजय होगी। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, चुगली करना, रीस करना, ईर्ष्या करना, ये सब पाप है। बाप कहते हैं तुम योग बल से विश्व का परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या अपना परिवर्तन नहीं कर सकते? हम दुनिया को बदलने के लिए ठेका उठाया हमने, तो अपना परिवर्तन तो पहले चाहिए,
विश्व
का परिवर्तन कर सकते हैं।
एक्चुअली अगर हम देखें शीलू बहन, तो हम सबसे ज्यादा दूसरों को ढूंढ रहे होते हैं कि उसको चेंज होना चाहिए, उसमें ये गलती है या दुनिया में ये गलती है, पर्यावरण को चेंज करना है, इसको करना है, बट समवेयर जहां अपने ऊपर बात आती है देन वी से कि आई न्यू समबडी और उन्होंने यही कहा कि वो मेरी बातें नहीं सुनते, उन्हें समझ में ही नहीं आती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आई सेड कि आप ये थॉट छोड़ दो ना, फिर मैं तो नहीं चेंज हो सकती, ये एटीट्यूड है कि मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ वाली बात।
जो बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे ना चश्मा पहनते हैं ना, तो दूर की नजर बहुत पावरफुल है पर नजदीक की नजर कमजोर है,
तो दिखता ही
नहीं है, इसलिए अपनी कमजोरी तो दिखती नहीं है, दूसरे की कमजोरी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व का परिवर्तन कर सकते, तो क्या अपना परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इसलिए अपना परिवर्तन पहले चाहिए, और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, बूंद बूंद से सागर भरता है।
ये तो है,
कई लोग कहते हैं ना विश्व में जब शांति आएगी तब
हम भी शांत हो जाएंगे,
नहीं पर मेरे में शांति आएगी तब विश्व में शांति आएगी। शुड बी द अदर वे।
अभी हमने जब बात की थी कि मैं सूर्य की तरह प्रकाश बनूंगा, तो फिर चारों तरफ प्रकाशमय होने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए भी मुझे प्रकाशमय तो बनना ही पड़ेगा
जी।
तो मुझे परिवर्तन तो सबसे पहले करना
पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और यही हम भूल करते हैं।
सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी जो है,
मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। मैं दूसरे को नहीं बदल सकता हूँ, अपने आप को बदलने से दूसरे को प्रेरणा दे सकता हूँ, पर जबरदस्ती मैं किसको नहीं बदल सकता हूँ। बस ये अगर समझ जाए और खुद के तरफ दृष्टि जाए बदलने की, तो देखो जग बदल जाएगा।
बिल्कुल,
ये मुख्य बात,
तो ये बात हमें समझने की बहुत जरूरी है। बार बार हम ये बात कहते भी आ रहे हैं। आज बाबा ने स्वयं अपने जो बात ये कही हुई है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन की बात संभव हो सकती है।
तो ये बाबा के महावाक्य हैं। अंत में बाबा कहते हैं, अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। फिर बच्चे रिटर्न में कहते हैं, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार और नमस्ते। तो हम भगवान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं।
यहाँ अगर हम देखें तो इतना प्यारा सा एक रिश्ता, जो रोज का रिश्ता है, जब भी हम अपने बड़ों से मिलते हैं हम उन्हें नमस्कार कहते हैं, तो यहाँ बाबा खुद पहले हमें नमस्ते कहते हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो उनके नमस्कार।
बाबा कहते हैं कि मैं तो बहुत निरहंकारी हूँ। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो मेरे से भी ऊंचे हो। और इसमें कहते हैं बाबा कि तुम तो मेरी पूजा, शिव बाबा कहते हैं एक ही रूप में होती है, ज्योतिर्लिंगम रूप में, लेकिन तुम्हारी पूजा डबल रूप में होती है। निराकार रूप में भी आत्मा की पूजा होती है, तो साकार रूप में भी होती है, तो दोनों रूप में आत्मा की पूजा होती है। इसीलिए आत्मा परमात्मा से भी उस रूप से ऊंची हो गई। तो बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते, हमारे आगे झुकते और कहते हैं कि बच्चे आप तो मेरे से भी महान हो। ये तो परमात्मा की निरअहंकारिता है, जो हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा रखते हैं। कई बार होता ना, छोटे बच्चे को कंधे पर पिता बिठाएगा और कहेगा, देखो बेटा तुम मेरे से भी लंबे हो गए। तो ये तो पिता अपने बच्चे को उमंग में लाता, तो भगवान भी हम बच्चों को उसी उमंग में लाते हैं, उत्साह देते हैं, एक नशा चढ़ाते हैं कि देखो तुम बच्चे मेरे से भी महान हो। लेकिन जितना बाबा हमारे आगे निरहंकारी बनते हैं, उतना हम भी फिर निरहंकारी बने, और भगवान के आगे भी तो दुनिया के आगे भी। तो जब हम झुकते हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली झुकती है। हम सोचते हैं मैं अकड़ के चलो, तो दुनिया कहेगी हम भी अकड़ के चलेंगे, तो फिर दोनों अकड़ के चलेंगे
तो फिर कोई झुकेगा बन नहीं सकता,
कोई झुकेगा नहीं, तो ऐसे ही टकरा करके अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं। ये अहंकार का परिणाम होता है। तो शिव बाबा को हम देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं कि कितने निरहंकारी बन करके बच्चों को प्यार से रोज रोज समझाते हैं, ताकि बच्चे बदल जाए।
देखें श्री बहन, तो ये बाबा का जो स्वरूप है, या बाबा की जो पूरी बात है, या बाबा का जो हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमें भी संबोधित कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल है, जहां हमने ये कहना है कि हर आत्मा को उस तक पहुंचने का प्रयास करना है, और हमें क्षमता है कि हम उन सभी गुणों को अपने अंदर इमर्ज कर पाए, क्योंकि वो गुणों से हम वारिस हैं, उसके परमात्मा के सभी गुणों के वारिस भी हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए, मुरली हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
देखिए, अभी तक जो अभी हम बात कर रहे थे, वो हम सोचते थे कि चलिए ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जब आज परमात्मा के स्वयं कहे हुए ये महावाक्य सुनते हैं, तो सचमुच ऐसा लगता है कि ये जीवंत होकर हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे खुद की पहचान की बात हो, चाहे इस सफर पर चलते हुए, पुरुषार्थ करते हुए हमसे मिस्टेक्स हो जाएं, तो बाबा कितने प्यार से हमें इस बात का एहसास देते हैं कि अगर मिस्टेक हो भी जाती है, गलती हो भी जाती है, क्योंकि हम संस्कारों के वश में हैं, हम माया के वश में हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम के वश में हैं, तो हम अगर माफी मांग लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, और जैसे कि आज शीरू बहन ने कहा कि एक बैड एक्सपीरियंस है,
जजमेंट
जो हमारा एक बैड जजमेंट जो है वो बैड एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन वही बैड एक्सपीरियंस हमें बेटर जजमेंट और फिर बेटर एक्सपीरियंस की तरफ ले जाएगा। तो वो गुड एक्सपीरियंस, वो खूबसूरत एहसास अगर हम जिंदगी में चाहते हैं, तो बैड एक्सपीरियंस से या बैड जजमेंट से भी गुजर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उन्हें रिपीट ना करते जाएं, क्योंकि बाबा का प्यार, बाबा का जो एक पूरा दया का भाव भी हमारे साथ है, क्योंकि वो समझते हैं, जैसा कि कई बार शीरू भाई आपकी बात में भी आ रहा है कि वो हमें कहते हैं कि आप तो ज्यादा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपको पुरुषार्थ करना है, कितने मुकामों पर आपको लड़ना है, कितने पहलू हैं जहां जहां आपने फाइट करना है, तो उनके पास हमारे लिए दया का भाव है, लेकिन हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम में वो क्षमता है, हम बाबा के दिखाए हुए इस रास्ते पर चल सकते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठ रहा हो, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं, और अपने नजदीक के सेंटर के बारे में पता करने के लिए आप या तो हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राज योगा मेडिटेशन सेंटर, यू कॉल अस ऑन 09999744555।
ब्रह्मा कुमारी इसके आज के सफर में इतना ही, लेकिन ये जो बातचीत है, ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। ओम शांति।
ओम शांति।